एव लक्षयते लोको लोकान् पर्यटतोऽपि यान् यथा सर्वत्र सर्वा आत्मानं ये यस्य हेतवः नहीं इस प्रकार लक्षयते देख सकते हैं लोक लोकान समस्त लोकों में पर्यटक विचरण करते हैं अपि यद्यपि यान जिसको यथा जिस तरह सर्वदृशां परमात्मा सर्वे सब में आत्मनम प्रत्येक प्राणी के भीतर ये जो अस्य इस जगत के एतवः कारण अनुवाद ऋतु महाराज ने आगे कहा, यद्यपि आप समस्त लोकों में विचरण करते रहते हैं किंतु लोग आपको नहीं जान पाते। जिस प्रकार वे प्रत्येक हृदय में वास करने वाले और प्रत्येक वस्तु के साक्षी परमात्मा को नहीं जान पाते, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव भी परमात्मा को नहीं जान पाते। ऋतु महाराज ने आगे कहा, यद्यपि आप समस्त लोकों में विचरण करते रहते हैं किंतु लोग आपको नहीं जान पाते। जिस प्रकार प्रत्येक हृदय में वास करने वाले और प्रत्येक वस्तु के साक्षी परमात्मा को नहीं जान पाते, यहां तक कि ब्रह्मा तथा शिव भी परमात्मा को नहीं जान पाते। तात्पर्य भाई जवान रे इस वक्त का स्वामी श्री प्रभुपाद, की श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया है, मुह्यंति यत् सूरयः। कभी कभी ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र जैसे देवता भी श्री भगवान को समझ नहीं पाते। जब श्री कृष्ण इस लोक में थे तो ब्रह्मा तथा इंद्र ने भी उन्हें गलत समझा, तो फिर योगियों या ज्ञानियों का क्या कहना है? श्री भगवान को निर्गुण मानते हैं। इसी प्रकार चारों कुमार जैसे महापुरुष तथा वैष्णव भी सामान्य पुरुषों से अदृश्य रहते हैं, यद्यपि वे विभिन्न लोकों में सदैव विचरण करते रहते हैं। जब सनातन गोस्वामी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन हेतु गए तो चंद्रशेखर आचार्य उन्हें नहीं पहचान पाए। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि भगवान प्रत्येक हृदय में स्थित हैं और वैष्णव भी जो उनके शुद्ध भक्त हैं संसार भर में भ्रमण करते रहते थे, किंतु भौतिक संसार की माया से ग्रस्त लोग इस सृष्टि के अथवा वैष्णवों के स्रोत रूप श्री भगवान के रूप को नहीं समझ पाते। अतः यह कहा जाता है कि मनुष्य अपने भौतिक नेत्रों से ना तो भगवान की ओर ना ही वैष्णव को देख सकता है। उसे अपनी इंद्रियों को शुद्ध करके भगवान की सेवा करनी होती है, तभी क्रमशः वह अनुभव करता है कि श्री भगवान कौन है और वैष्णव कौन। ओम अज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानंजन शलाकाय चक्षु मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे चैतन्य मनोविष्टम् स्थापितम् येन भूतले स्वयं रूप कदा मायं ददाति स्वपादान्तिकाम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीन बन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते ताप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर वासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। महाराज कुटु से भेंट करने के लिए स्वयं प्रकट होके चारों कुमार आए और कुटु महाराज उनका गुणगान कर गुणगान करने में वो ऐसा कहते हैं कि यद्यपि आप समस्त लोगों में विचरण करते रहते हैं किंतु लोग आपको नहीं जान पाते, जिस प्रकार वे परमात्मा को नहीं जान पाते, यहाँ तक कि ब्रह्मा और शिव भी परमात्मा को नहीं जान पाते या कभी मिस्टेक करते हैं। ऐसी बात नहीं कि ब्रह्मा और शिव परमात्मा को नहीं जानते, लेकिन कभी कभी मिस्टेक करते हैं। तो तात्पर्य में चल प्रभुपाद बता रहे हैं कभी कभी ब्रह्मा शिव इंद्र चंद्र जैसे देवता भी भगवान को नहीं समझ पाते। जब श्रीकृष्ण इस श्लोक में आए थे तो ब्रह्मा तथा इंद्र ने भी उन्हें गलत ये प्रभुपाद सफर कर रहे हैं जो वास्तव दसवें स्कंद में बताए गए, तेरहवें स्कंद में दिवाली के अगले दिन इंद्र की पूजा के लिए सब ब्रजवासी तैयारी कर रहे थे। तो उस समय जब भगवान ने ऐसा पूछ लिया कि ये क्या पूजा की तैयारी हो रही है, तो उनको बताया गया कि हमें इंद्र की पूजा करनी पड़ती है। नहीं है कि हम अपने हृदय से अपनी खुशी से अपने प्रसन्नता से इंद्र की पूजा करते, हमें ये पूजा करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है, पंडित पढ़ने का क्या मतलब, क्योंकि पूजा साधना जप ध्यान ये सब तो मन से होना चाहिए, ऊपर से कोई जबरदस्ती करा रहा है या करना पड़ रहा है तो वो डिवोशनल सर्विस नहीं है। डिवोशनल सर्विस कैसे होती है, आहे तुकि आपूर्ति रखा या आत्मा सुप्रसिद्ध होती है, तो हमारी आत्मा को वो सेटिस्फेक्शन देना चाहिए, उससे संतुष्टि मिलनी चाहिए, वो है डिवोशनल सर्विस। और अगर जो कोई काम हम जबरदस्ती का करते हैं, कोई खुशी कोई सेटिस्फेक्शन कुछ संतुष्टि नहीं प्राप्त हो रही, तो वो डिवोशनल सर्विस नहीं है। तो भगवान ने ब्रजवासियों को चैलेंज किया, ये क्या क्यों इंद्र की पूजा करनी है, इंद्र हमें बरसात देते हैं, वर्षा देते हैं, और अगर वो वर्षा नहीं देंगे तो हमारी गायों को पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा और हमारी गायों के लिए जो सारे जंगल में घास वगैरह घास फूस सब कुछ उगती है वो भी नहीं होगी, तो इसलिए हम ग्वालों को इंद्र की पूजा करनी पड़ती। वर्षा भेजना समय पे वर्षा कराना ये सब तो इंद्र का कार्य है, उसकी अपनी सेवा है, डिवोशनल सर्विस है, जो क्योंकि भगवान ने स्वयं उसको वो ड्यूटी दी हुई है कि समय से ऐसे ऐसे पहुंचा करनी होगी। तो जैसे हमारी कोई डिवोशनल सर्विस है, उसको अगर कोई अप्रिशिएट करे तो कोई बात नहीं, हम नहीं मानते, बुरा नहीं मानते, लेकिन उसके लिए हमें वापस रिपे करने की कोशिश करे और वो पेमेंट हम स्वीकार कर लें, तो वो डिवोशनल सर्विस कहाँ रह जाएगी। तो भगवान इंद्र को भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं इस पावर में फंसने से कि मैंने जो सेवा मुझे मिली हुई है वो करने के लिए मैं वापस आपसे डिमांड करता हूं कि मुझे ये सब दो, तो मैं मेरा जो कार्य आपकी सेवा का वो कार्य सब करूंगा। तो भगवान ने मना किया और जब इंद्र को ये पता चला तो अपने अहंकार की वजह से वो ये समझ नहीं पाए कि गलती उनकी स्वयं की है। इसलिए उन्होंने ब्रज के ऊपर अपने बादलों से, प्रलयंकारी बादलों से आक्रमण किया और जब सारा ब्रज धाम डूबने लगा तो भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सब गायों की और ब्रजवासियों की रक्षा की। जब एक हफ्ते तक भगवान ने गोवर्धन पर्वत अपनी उल्टे हाथ की छोटी उंगली पे उठाए रखा तो भी इंद्र को समझ जाना चाहिए था, लेकिन इस एक हफ्ते के बाद उसको ये बात समझ में आई कि ये छोटा सा बालक
पूरा का पूरा गोवर्धन पर्वत उठाए,
वो भी उल्टे हाथ की छोटी उंगली। उनके सका क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं ये तो छोड़ दे, हमने इसमें अपनी डंडी लगाई हुई है, लकड़ी लगाई है, छोड़ दे, जाने दे, रिलैक्स कर दे। सारे दुनिया के लक्ष्य गोवर्धन पर्वत को रोक नहीं सकते, तो जब कोई नहीं मानता तो उनको संतुष्ट करने के लिए भगवान ने जरा सी उंगली हटाई तो साहब ने कुछ नीचे कहा, नहीं 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 पकड़े रहे, संभाले, छोड़ना नहीं। तो उसके बाद इंद्र को ये बात समझ आई, अपनी गलती का एहसास। ये कथा रात भागवत अमृत में भी आती है और इंद्र अपनी क्षमा याचना के लिए बहुत घबराए हुए कि मैं इतना बड़ा जघन्य अपराध मैंने किया है स्वयं भगवान के ऊपर, मैं जाऊंगा तो पता नहीं मेरे ऊपर सुदर्शन चक्र ही चला दें। इंद्र को मृत्यु का बहुत भय रहता है और अपनी कुर्सी का भी बहुत भय रहता है, कोई मेरी ले नहीं जाए कुर्सी, मृत्यु का भी बहुत भय कि मैं स्वर्ग का राजा और कहीं असमय ही जीवन चला गया तो मेरे भोग भोग ने तो पूरे नहीं हो पाएंगे। वास्तव में इंद्र जैसी अवस्था संसार में ज्यादातर सभी की है, चाहे कोई कितना सुख भोग रहा है या दुख भोग रहा है उसको लगता है कि मैं बहुत अच्छी पोजीशन में हूं, मैं इसको छोड़ के नहीं जाना। जैसे कि और भी कथा आती है कि एक बार इंद्र को श्राप मिल गया सुअर बनने का, तो इंद्र का जन्म सुअर के रूप में हो गया, शायद वृंदावन में ही हुआ होगा। और जब एक वर्ष पूरा हो गया, ब्रह्मा जी बहुत परेशान थे कि इंद्र का कार्य है अब मुझे देखना पड़ रहा है, वो तो जाके सुअर योनि को प्राप्त हो। तो एक वर्ष पूरा होते ही ब्रह्मा जी आ गए और इंद्र क्या कहता है सुअर के रूप में, क्यों मुझे ले जाना चाहते हो, मैं तो यहां ठीक ठाक हूं, देखो कितनी व्यवस्था मेरे चारों तरफ और मैं उसके अंदर ही बैठा हूं। इतना भोजन और वो मेरी पत्नी, ये सब मेरे बच्चे, मेरा परिवार, हम सब बिल्कुल स्वस्थ और सुखी परिवार है। काम करने जाना नहीं पड़ता, कोई नौकरी नहीं है, कुछ नहीं, लोगों के घरों के पीछे से अपने आप भोजन निकलता है और हम काफी के मस्त रहते हैं। वास्तव में इंद्र की नहीं, हम सबकी लगभग वैसी हालत है। तो जबरदस्ती ब्रह्मा जी ने जब समझ गए ये मानने वाला नहीं है, तो उसको जबरदस्ती उसके प्राण निकाल के ले गए थे सब वापस। तो इसी वजह से इंद्र नहीं चाहते कि ऐसा कोई चांस दिया जाए कि भगवान को मेरे ऊपर क्रोध आ जाए। आसानी से किसी में भी इंद्र को मारने की शक्ति नहीं है, लेकिन तो स्वयं भगवान है, स्वयं भगवान की शक्ति का कोई हिसाब नहीं है। इनका सुदर्शन चक्र वो तो सफा कर देगा मेरी डर के मारे माता सुरभी को लेके आए। तो जो कुछ भी भगवान का प्रकोप हो पहले आगे सुरभी को खड़ा कर दूंगा, वैसे ही उसको देख के शांत हो जाएंगे और अगर आया भी क्रोध तो उसके ऊपर आएगा, जब उसके ऊपर क्रोध निकाल लेंगे तब मैं क्षमा याचना के लिए आ जाऊंगा। आना तो चाहते क्षमा याचना, लेकिन फिर भी क्षमा याचना में भी भय, बिल्कुल भयभीत है। तो माता सुरभी ने इस तरह से इंद्र की रक्षा की, हालांकि वो चाहती नहीं दिया था कि मैं इंद्र की रक्षा करने के लिए जाऊं, क्योंकि इसने ही पाप किया, मैं क्यों इसको बताऊं। लेकिन इस बहाने मुझे भगवान के साक्षात दर्शन मिलने वाले हैं, तो इंद्र चलो मैं भगवान के दर्शनों को हो मां नहीं कहने वाली, चाहे गाय हूं लेकिन इतनी बुद्धि मुझ में भी है, भगवान के साक्षात दर्शन मिलने वाले हैं, वो मैं जाऊंगी ऐसे तो कुछ बात भी होगी, कौन रोज रोज भगवान मेरे से बात करने का मुझे मौका मिलने वाला है, तो इसलिए मैं जाने के लिए जा। माता सुरभी ने भगवान को पहले पंचामृत में अभिषेक करा, कहाँ है वो अभिषेक, अभी भी गोविंद कुंड में भरा हुआ है, आप सब लोग जाके वहां स्नान करके उसको पटा के आ सकते। और गोविंद कुंड क्यों कहते हैं उसको, क्योंकि वहीं पे माता सुरभी ने भगवान को गोविंद नाम दिया। ये जो इंद्र है ये मानवों का इंद्र हमारा नहीं, हमारे इंद्र तो आप हो, गौओं के इंद्र गोविंद, क्योंकि एक हफ्ते तक आप गोवर्धन पर्वत उतार के खड़े रहे, तो आपने हमारी लाखों गैयाओं की रक्षा की। ये इंद्र तो प्रकोप भेज रहा था, हमारे रक्षक तो आप हो, इसलिए हमारे इंद्र आप हो। आज से आपका नाम गोविंद।
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल
माता सुरभि के बाद इंद्र भी आ गया है, और इंद्र को भगवान ने सवाल किया। लेकिन श्रीमद् भागवतम में ऐसा नहीं बताया कि उसके बाद इंद्र की फीलिंग क्या थी। बृहद् भागवत अमृता में सनातन गोस्वामी ये बात बताते हैं कि जब भगवान को क्षमा कर दिया तो इंद्र की फीलिंग थी और भी ज्यादा लज्जा, बिल्कुल कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा कि इतने बड़े जघन्य अपराध के लिए भगवान ने एक क्षण भी नहीं लगाया, सीधा सबको अपने सबोर्डिनेट से एक्सपेक्टेशन होती है। हमारे नीचे जितने भी लोग हैं, जितने लोग यहाँ पेरेंट्स हैं, वो जानते हैं उनके संतान, उनसे पता होता है, एक्सपेक्टेशन होती है ये क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। जिससे एक्सपेक्टेशन हो वो गलत करे, बुरा करे या नहीं माने तो और ज्यादा बुरा लगता है, जिससे एक्सपेक्टेशन है ही नहीं वो नहीं करे तो कम बुरा लगता है। तो इतनी आसानी से मुझे क्षमा कर दिया, इसका मतलब भगवान को कभी मेरे से कोई एक्सपेक्टेशन थी ही नहीं। ये सनातन गोस्वामी बता दे, जब नारद मुनि को इंद्र के पास भेजा गया, एक बहुत बड़े राजा थे इस धरती पे, उनको सर्वोत्तम भक्त मानने के लिए नारद मुनि गए, तो नारद मुनि को उस राजा ने बताया कि मैं तो बहुत छोटा सा राजा हूं और मेरा जीवन काल ही कितना है। असली भक्त जो अच्छी तरह से भगवान की पूजा कर सकते, जो अच्छी तरह से भगवान की पूजा करते वो तो नारद जी उनके पास गए कि आपको हम खिताब देने वाले हैं फॉर बेस्ट डिवोटी, सर्वोत्तम भक्त भगवान। तब इंद्र बताते मैं सर्वोत्तम तो क्या कुछ भी नहीं हूं, एक तो मैंने भगवान को नहीं पहचाना, फिर उनके ऊपर आक्रमण करने गया और मैं तो इतना गिरा हुआ हूं कि वो सब होने के बाद भी जब भगवान स्वर्ग आए और मेरे से एक पेड़ मांगा तो मैंने इनकार कर दिया, फिर भगवान को मेरे ऊपर दोबारा से आक्रमण करना पड़ा, मैंने दोबारा से मुंह की खाई, मुझे एक बार मिल गई समझ में, एक गलती तो कोई भी कर सकता, मैंने भगवान से लोहा लेने की कोशिश की, भक्तों की संख्या में, भक्तों की श्रेणी में मेरा तो नाम आना ही नहीं चाहिए। मैं तो भक्त कहलाने के योग्य नहीं। हाँ, अगर कोई भक्त कहलाने के योग्य है तो ब्रह्मा, वो भगवान के नित्य प्राण। अब ब्रह्मा, ब्रह्मा की भी वही हालत है। ब्रह्मा ने देखा कि ये इतना महाभयंकर दैत्य अगासुर अजगर बहुत भयंकर होते और ये तो अगासुर है, कोई आम अजगर नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा महाशक्तिशाली और वृंदावन की जंगलों में ये ग्वालों के छोटे छोटे बच्चे ये खेल रहे थे और उनको निगलने के लिए वो आया तो उन्होंने उल्टा अगासुर को मार दिया। जबकि अगासुर का आकार क्या बताया है, जब वो वहां आके लेटा था तो उसको ये था किसी को नजर नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि वो पहाड़ जैसा दिखता है, जैसे कि पहाड़, पहाड़ के साइज का, तो उसका साइज था। वो इतना बड़ा चीज देख के किसी को समझ में नहीं आया कि इसका शुरू कहां से होता है, अंत कहां होता है। जैसे कि राम सेतु है, आज तक किसी को राम सेतु मिला नहीं था, वही तो है, लेकिन वो सेतु नजर नहीं आता। क्यों नहीं नजर आता? सामने होते हुए भी, क्योंकि वो 4 किलोमीटर चौड़ा है, चौड़ाई लंबाई नहीं, 4 किलोमीटर तो चौड़ा है वो। 4 किलोमीटर बड़ी चीज किसी को नजर आती है? 4 किलोमीटर कौन देख सकता है? यहां ये चीज 4 किलोमीटर जाते वो तो लगता है कि ये तो इसमें सेतु कहां है, वो खुद ही सेतु है 4 किलोमीटर का। बहुत छोटी चीज हो, हमारे इंद्रियां कैसे इंपॉर्टेंट है उसमें प्रभुपाद बताते हैं कि बहुत छोटी चीज हो वो हमें नजर नहीं आती और बहुत बड़ी हो वो भी नहीं नजर। तो इस वजह से वो राम सेतु जहां हमारे शास्त्रों में बताया गया है वही है, हजारों लाखों साल से वो तो वही खड़ा है, लेकिन नजर किसी को नहीं आया जब तक के नासा सैटेलाइट को वो नजर नहीं आया, क्योंकि उसको नासा सैटेलाइट को 4 किलोमीटर एक पतली सी लाइन की तरह दिखता है। तो वो लाइन सीधी नजर आ गई कि यहां से लाइन जाके भारत से जाके श्रीलंका को एक लाइन, तो लाइन 4 किलोमीटर चौड़ी। तो इतना महाकाय मुंह खोल के बैठा हुआ था ये सोच के लोग बालक गुफा समझ के मेरे मुंह में आ जाए, और वही हुआ। बालक और पीछे से बछड़े भी गुफा समझ के अंदर घुस। जब भगवान ने अगासुर का संहार कर दिया तो ब्रह्मा अचरज में आ गए कि ये कौन है, क्या है, कहीं भगवान तो नहीं?
हो सकता है भगवान,
मैं जरा जाके देख के आऊं। जब आए तो अभी भगवान अगासुर को संहार करके सात बालकों के साथ मिलके बैठ के अगले जंगल में पिकनिक कर रहे। सबने अपने अपने टिफिन बॉक्सेस खोल लिए। आप पूछ रहे हैं भगवान को, कृष्णा लड्डू खाएगो खाएगो लड्डू,
और वो क्या कहेंगे, हाँ मेरा तो नाम ही लड्डू गोपाल है, खिला दो मुझे लड्डू।
तो आंख बंद कर ले और मुंह खोल ले।
भगवान ने आंख बंद करी, मुंह खोला और
भगवान के मुंह में फूलों का लड्डू डाल दिया, पहले खा लो।
भगवान कहते तो है पत्रम पुष्पम फलम तो है, लेकिन वास्तव में कौन पुष्प खाएगा? पुष्प पुष्प तो होते भी है खाने लायक, तुम जाकर पुष्प तो खाने लायक नहीं।
तो जब ये सब लीला देखी तो ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए,
उसको कहते हैं ब्रह्म विमोहन
कि भगवान की लीला बहुत से लोगों को समझ में नहीं आती। भगवान ने भगवद गीता में भी कहा है जन्म कर्म चमे दिग्गम, जिसको समझ में आ गई उसका फिर दोबारा से इस पृथ्वी पे जन्म होने वाला नहीं है। तो इसका मतलब बहुत कठिन है, इतनी कठिन है उसका ही एग्जाम्पल कि ब्रह्मा भी धोखा खा गए भगवान को सामने देख के कि ये भगवान नहीं हो सकता, ये जरा सा बालक, ये मैं अभी इसको टेस्ट करता हूं। इस बार भगवान की आंख बंद कराई गई, सारे बचरे सारे बालक भगवान को पता चलते ही उन्होंने अपनी शक्ति यूज की। ये पास टाइम तो सबको मालूम है कौन सी शक्ति यूज करी, उसको कहते हैं वासुदेव सूत्र। सुखदेव गोस्वामी भागवतम बताते कि अपना वासुदेव फीचर भगवान ने यूज किया और एक्सपेंड, इसको विलास फीचर थे टेम्पररली भगवान किसी भी रूप में विलास में आ जाते, जैसे कि कासीना सौ गोपियों हजारों दस हजारों पचास हजारों सबके साथ एक सबके साथ वो भगवान का विलास। इसी तरह से भगवान ने विलास विस्तार सारे गोपों में गैयों में। तो कहने का अर्थ ये है कि भगवान को समझना इतना दुर्लभ है, इतना कठिन है, साक्षात सामने होते हुए भी ब्रह्मा जैसे हाइएस्ट बीइंग इज जस्ट। बच्चूराव ठाकुर एक भजन में बताते हैं कि मुझे बहिर्मुख ब्रह्मा का भी जन्म नहीं चाहिए, क्यों वो हाईएस्ट जन्म है, उससे हायर कोई किसी नहीं। कौन सा जन्म चाहिए बच्चूराव ठाकुर को, अगर जन्म देना ही है तो चाहे कीड़े का दे दो, लेकिन कहां देना, किसी भक्त के घर में। क्यों देना भक्त के घर में, जिससे कि आपका नाम मेरे कान में पड़ता है, अनायास ही मुझे आपका नाम। तो हाईएस्ट भी ब्रह्मा भी धोखा खा गया, हम क्या करेंगे जिस दिन भगवान सामने आएंगे, और जिस दिन भगवान सामने नहीं आएंगे, भगवान हमारे सामने ही हैं, और पीछे भी हैं और दाएं भी हैं और बाएं भी हैं और नीचे भी हैं और ऊपर भी। लेकिन हमें लेकिन जिस दिन वो दर्शन देने के लिए भी आएंगे तो क्या आवाज फिल इन द ब्लैंक अपना नाम सब भर लो उसको दर्शन देने जाना है तो कितने लोग पहचान लेंगे? कोई नहीं पहचान। क्यों? आपका आंसर बिल्कुल सही है। वो अहंकार है जो कहेगा कि हाँ मैं पहचान। जब तक तो भगवान नहीं चाहे तब तक नहीं पहचान। तो इस श्लोक में तो महाराज भी यही कह रहे हैं कि आप चार कुमार मेरे सामने स्वयं प्रकट हुए हो और आप चाहते हो कि मुझे आपके दर्शन हो तभी हो रहे हैं, नहीं तो आप मेरे सामने आ भी जाते और मुझे तो भी दर्शन नहीं होते। जैसे कि अमर गुरु महाराज गोपाल कृष्ण गोस्वामी एक कथा बताया करते थे, अब नहीं बताते कि एक वृद्धा जंगल से लकड़ियां तोड़ के बोझार अपने सर पे रख के आ रही है और जब उसका बोझ गिर जाता है अनायास ही उसके मुंह से भगवान का नाम निकलता है तो 8 साल के बालक के रूप में साक्षात भगवान उसके सामने आके खड़े हो गए और पूछ गया उसको, भैया बोल आए बुलाए वो मुझे। और वो वृद्धा कुछ भी मांग सकती थी, भगवान के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, कुछ भी कोई ऐसी वस्तु नहीं है। जब भगवान आके आपसे पूछे कि बेटा क्या चाहिए उस समय आप कह दो तो भगवान भी हाथ खड़ा कर देंगे, नहीं 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 ये नहीं होगा, बताओ ना होता है ऐसा कुछ? कुछ नहीं। लेकिन वो क्या मानती है कि मेरा लकड़ी का गट्ठा जो मेरे सर में छेद कर रहा था जगह जगह वहीं वापस रख दो, मुझे यही चाहिए। तो भगवान को पहचानना या रियली किसी को ये पता चल जाए कि हाँ मुझे भगवान के दर्शन हो रहे हैं, वो केवल और केवल कृष्ण कृपा से ही संभव। हमारी कितनी भी श्रद्धा कैसे भी हो कुछ भी हो वो पूरा कृपा फैक्टर जब तक नहीं होगा, साथ भगवान कृष्ण बलराम के ऑल्टर टेबल के नीचे आ जाएंगे और हमें समझ में नहीं आएंगे। और जब उनकी कृपा होगी तो ऑल्टर पे खड़े खड़े भी वो वहीं से ऐसे दर्शन दे देंगे कि बिल्कुल हृदय तक ये अनुभूति हो जाएगी कि आज मुझे भगवान के दर्शन, भगवान ने आज मुझे दर्शन दिए। कभी किसी को भगवान की पलक झपकती नजर आ जाती, कभी भगवान की उसको स्माइल देती, किसी के साथ हुआ यहां पर किसी के साथ बताना नहीं चाहते, ऐसा होता है कमो मन भक्तों तो भगवान कभी उन्हें पलक झपकते थोड़ा सा हिलते थोड़ा सा स्माइल देते आपकी तरफ देखते ऐसे नजर आ जाते। लेकिन पब्लिक में भक्त लोग मानते नहीं हुए तो मुझे शोर है आप सबके साथ या कुछ के साथ जरूर ऐसा हो रहा है लेकिन आप सबके सामने बात को मानना नहीं चाहते। लेकिन जो कुछ भी है पॉइंट ये है कि जब तक भगवान की स्वयं कृपा नहीं हो तब तक उनके सामने खड़े हुए भी हमें उनके दर्शन नहीं हो सकते। तो इसका मतलब है कि किसी भी पुरुषार्थ से कुछ भी करने के बाद जब तक वो कृपा का द्वार नहीं खुले तब तक ना तो हमें भगवान के दर्शन हो सकते हैं ना हमें नाम में रुचि आ सकती है। कितने भक्तों को यहाँ नाम में रुचि है? आज सब प्रण करके आए, कोई हाथ ऊपर ही नहीं करेगा। मैंने हाथ इसलिए ऊपर नहीं किया कि मुझे नाम में रुचि है। कितने भक्तों को नाम में रुचि है? एक को। थैंक यू प्रभु। एक को नाम में रुचि है। क्या नाम है आपका? हाँ, माधव प्रिया। माधव प्रिया, माधव प्रिया, पांडव प्रिया, पांडव प्रिया, पांडवों के प्रिय कृष्ण, कृष्णदास है इनका नाम। इनको नाम में रुचि है। तो प्रभु जी आज हम सबको बाकियों को आशीर्वाद दे जाना किसी तरह से, क्योंकि नाम में रुचि के दो ही तरीके हैं, या तो डायरेक्ट भगवान से या किसी दूसरे ऐसे भगवान के भक्त से जो जिसको पूरी तरह से नाम में रुचि है वो सबको दे सकता है। तो सबको पता चल गया जिसको नाम में रुचि चाहिए प्रभु जी से आशीर्वाद दे। तो ये बिना कृष्ण कृपा के संभव है। और इस पॉकेट में श्री प्रभुपाद एक बहुत स्टडली, एक बहुत अच्छा डायरेक्शन में इसको ले जा रहे हैं कि जिस तरह से भगवान के दर्शन होते हुए भी हमें भगवान के दर्शन नहीं हो पाते, उसी तरह से वैष्णव के भी दर्शन होते हुए भी हमें वैष्णव के दर्शन नहीं होगा, वो भी वैष्णव कृपा से ही होगा या भगवान की कृपा। तो फाइनली पास्ट टाइम बता रहे हैं, जो मैं आपको बताने वाला नहीं है टाइम। चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला में 20वें अध्याय में चैप्टर 20 में सनातन गोस्वामी काशी जाते हैं भगवान के दर्शनों के लिए चैतन्य महाप्रभु, और बिना दरवाजा खटखटाए बिना कुछ करे कहां ठहरे हुए थे श्री चैतन्य महाप्रभु? कौन बता सकता है? जब सनातन गोस्वामी के आए तो कहां ठहरे हुए थे? चंद्रशेखर, चंद्रशेखर के घर। तो उन्होंने जाके दरवाजा भी नहीं खटखटाया, किसी को बताया भी नहीं, बाहर चुपचाप खड़े थे। उनको पता था ये चंद्रशेखर का घर है, यहीं पे चैतन्य महाप्रभु आए हुए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु को अंदर बैठे अपने आप पता चल गया सनातन आए, सनातन पास रहा। चंद्रशेखर को बोला जाओ बाहर, वैष्णव भक्त आए उनको अंदर लेके आओ। वो गए, सब कुछ कहता हूं मैं, बाहर कोई नहीं, कोई वैष्णव भक्त नहीं रहा। अच्छा, कोई वैष्णव भक्त नहीं, कोई तो होगा। यहां एक मुस्लिम फकीर का दिखने वाला, दिखने वाला एक भिखारी तरीके का दिखने वाला व्यक्ति है, उसी को लिया। तो हमारे सामने होते हुए भी कभी हमें वैष्णव भजन, क्योंकि वैष्णव वेशभूषा से नहीं होते कि हाँ ये वाले प्रभु जी सैफ्रॉन धोती कुर्ता, ये तो है भी, लेकिन मैं खाली एग्जांपल बता रहा हूँ कि ऐसे कोई कोई भी ऐसा दिखे उसका मतलब ये नहीं कि वो डेफिनेटली वैष्णव है। खाली दिखने से वैष्णव नहीं होता, वैष्णव के दर्शन का मतलब है कि वैष्णव के दर्शन से आपको अनायास ही भगवान के दर्शन का अनुभव है। वो नहीं है कि वैष्णव भगवान है, लेकिन वो वैष्णव के दर्शन है जिनके दर्शन से भगवान के दर्शन होने की अनुभूति। एक सेकंड के लिए भी जो वैष्णव संग वैष्णव कृपा है वो हमें नाम रुचि भगवान के दर्शन भगवान का धाम जो कुछ चाहिए प्रेम भक्ति तक सब कुछ दिला सकता है। और अगर कोई भौतिक वस्तु चाहिए तो वो तो बहुत ही आसान है, इसलिए तो इतना श्रम करने की जरूरत नहीं है, वो तो भक्तों को वैसे ही उपलब्ध है। ठीक है, आज के ऑफर्स में जो कुछ थोड़ा बहुत बता पाए, ऐसे बहुत गुड मीनिंग या डीप मीनिंग है और भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन टाइम हमारे पास इतना ही है। कोई प्रश्न हो तो कोई प्रश्न नहीं है, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की ग्रंथा श्रीमद् भागवतम की गीताय गौर प्रेमानंद।